नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम पिछले कई दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं कि जीवन में क्षमा का क्या महत्व है, क्षमा क्या क्या काम करती है, प्रकृति के साथ, संबंधों में, परिवार में, जहां हम लोगों के बीच रहते हैं, उन सब के बीच में क्षमा का क्या महत्व है। और विस्तार से इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमार सूरी भाई जी, गीता बहन जी, संदीप भाई। आइए, आपका स्वागत करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप भाई, मैं सार रूप में ये जानूं कि कैसे हम क्षमा को समझें। हम पिछले कुछ एपिसोड से ये चर्चा करते आ रहे हैं कि क्षमा क्या क्या काम करती है, कैसे आज आम व्यक्ति, जो लोग अपने घरों में काम कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, न सिर्फ विद्यालय से जुड़े हैं वो, बल्कि जो नहीं जुड़े हैं और इस प्रोग्राम को देखते हैं, सरल भाषा में कैसे समझे क्षमा को।
हर व्यक्ति इस संसार में एंजॉय करने के लिए आया है
जी,
और एंजॉय अगर समझो, जीवन हम सफर लेके चले हैं और सफर को सुहावना बनाना है, खुशी चाहिए। खुशी चाहने के लिए, और ये सफर है, यात्रा है, यात्रा अगर ट्रेन की है तो पटरी जरूरी है।
हाँ हाँ
हाँ। पटरी कौन सी है? अगर जीवन बहुत अच्छी तरह से सुहावना चलता रहे, खुशी से भरा रहे, तो इसमें दो पटरी होती है। तो दो पटरी में एक तो प्रेम जरूरी है और दूसरा क्षमा जरूरी है।
अच्छा,
दोनों में से एक भी पटरी खराब हो तो जीवन चल नहीं सकेगा। अगर हमें अपने जीवन में कंटिन्यू प्रोग्रेस चाहिए, प्रगति चाहिए, तो शांति जरूरी है
जी।
और शांति तभी हो सकती है जब हम माफ करना स्वीकार कर ले, सर्च कर ले। जब तक माफ नहीं करेंगे, मन साफ नहीं होगा। जीवन में जो हम चाहते हैं, उन हर परिस्थिति को, हर चीज को अगर हम चाहते हैं, परिस्थिति से दूर रहना चाहते हैं, बुराई से दूर रहना चाहते हैं, समस्या से दूर रहना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं, तो क्षमा बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बात छोटी है लेकिन काम बहुत बड़ा है
जी।
क्योंकि एक जैसे ये ऐसा है कि लेके एक ईंट निकाल दो, सब गिर जाएगा। लेकिन ये अगर फाउंडेशन पक्का हो, क्षमादान का भाव अंदर हो, अपने लिए भी, लोगों के लिए भी।
अब तक हम देखते हैं कि लोग अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए धन को महत्व दिए हैं, संबंधों को महत्व दिए हैं, लेकिन एक नई जानकारी हमें मिली कि क्षमा को भी उतना ही महत्व देना है जैसे दूसरे बातों को महत्व दे रहे हैं।
क्योंकि होता क्या है, देखो, अगर हम जीवन में क्षमा को महत्व नहीं देते हैं, अगर हमारे किसी के साथ मनमुटाव हो जाता है, अगर हमारा धन वालों के साथ मनमुटाव हुआ ना, तो सारे धन के लिए, मतलब धन वालों के लिए हमारे मन में नफरत बनती, तो किसी भी धन वाले से हमारा बनेगा नहीं। अगर धन वालों से नहीं बनता तो धन कहां से आएगा? ऐसे ही अगर किसी रिलेशन के साथ हमारा मनमुटाव होता है, क्षमादान नहीं कर सकते हैं, तो उस रिलेशन का संबंध, वो सुख हम नहीं ले सकते
नहीं।
उस संबंध का।
हाँ।
इसलिए क्षमा बहुत जरूरी है, हेल्थ के लिए भी, वेल्थ के लिए भी, हैप्पीनेस के लिए भी। क्योंकि पहले गंदगी मन में आती है, तो पहले मन की गंदगी साफ हो। जब तक मन साफ नहीं होगा, हम हेल्दी नहीं हो सकते। लेकिन मन की सफाई बिना क्षमादान के नहीं हो सकती। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम दिल से सभी को माफ करें, तो हमारा जीवन, हमारा सफर सुहावना हो जाएगा।
भाई जी, थोड़ा सा और इसको गहराई से जानना चाहता हूँ कि कैसे, प्रैक्टिकल आपके पास कोई उदाहरण हो तो समझे हमारे दर्शक की कैसे हम दूसरों को क्षमा का प्रभाव कैसे ऊपर डालें दूसरों के ऊपर।
बहुत ही सुंदर दो बिल्कुल सच्चे उदाहरण मेरे ख्यालों में उतर आए
जी।
बहुत नजदीक का है।
हाँ।
माँ का अपने बेटे, उससे बहुत प्यार तो होता ही है
जी।
तो प्यार तो था।
हाँ।
लेकिन देखिए, क्षमा भाव के अभाव में कैसे गड़बड़ हुई। तो माँ की बेटे से लड़ाई होने लगी। अभी लड़ाई हुई, पहले थोड़ी हुई, फिर ज्यादा हुई, दोनों ओर से गुस्सा। अब माँ ने एक दिन बहुत ज्यादा बोल दिया लड़के को, निकल जा मेरे घर से, घर मेरा है, तेरा यहाँ कोई स्थान नहीं। अब उसको भी हर्ट कर गया, अपनी अटैची बैग तैयार किया और निकल गया। अभी निकल तो गया, दो चार दिन के बाद अब माँ को याद आने लगी उसकी। प्यार तो था ही ना,
अपना बेटा तो,
बेटा तो होता ही, लड़ाई तो होती रहती है। लेकिन वो आ नहीं रहा, उसका पता नहीं, उसने अपना नंबर बदल लिया है। अब वो मेरे पास आई, भाई गलती तो मेरे से हुई है। ठीक है, वो भी कुछ गलती करता था, मैं उसे डांटती थी, लड़ाई होती थी, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया था, मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए
और
था।
इस भाव से भी नहीं बोली होगी कि सच मुझे घर
चला जाएगा तो धमकी देते हैं तो जाएगा तो कोई है नहीं, पता होता है, डराते रहते निकल जाए यहाँ से। लड़का मेरा साल गुजर गया है
जी,
तो मैंने उसको बताया फिर कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हूं मैं, ये 108 बार लिखो।
अच्छा।
और लिखने के बाद क्षमा याचना करूं बेटे से कि भले मैं तुम्हारी माँ हूं लेकिन मैंने तुम्हें थोड़ा ज्यादा बोल दिया था, मुझे फील हो रहा है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हें भी जरूर आती होगी, ऐसी ऐसी उससे बातें करो,
तुम जहां भी हो मुझे, मैं आपसे माफी।
हाँ, तो बस देखिए क्या हुआ, लिखती गई किस दिन हुए
जी,
22वें दिन ही लड़के का फोन आ गया और कहा माँ मुझे अपनी गलती महसूस हो रही है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको कष्ट दिया, मैं जानता हूँ माँ का दिल कैसा होता है, आपने भावुक होकर मुझे बोल तो दिया था लेकिन बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी, आप मुझे क्षमा करें। तो मैं देख रहा था और वो आ गया फिर कि इधर से ये क्षमा याचना कर रही है, उधर से उसने क्षमा याचना कर ली और आ गया, संबंध सुधर गए। तो मैं तो अपने सभी दर्शकों को आज कहूंगा एक चीज, पहले कहूंगा कि हम रोज सवेरे एक 3 मिनट का समय निकालकर उन सभी आत्माओं से क्षमा मांगा करें जिनको हमने कभी भी हजारों साल पहले कष्ट दिया हो, हम उन्हें जानते नहीं, उन्हें देख नहीं सकते, मन ही मन उनसे क्षमा याचना करें, मन हमारा बहुत हल्का हो जाएगा, उनको दुआएं भी दिया करें,
इससे स्वयं को लाभ होगा,
बहुत लाभ होगा, तुम सुखी हो जाओ। हमारे मन पे एक बोझ, किसी को इस कारण से डिप्रेशन भी हो रहा है आजकल, बहुत सारे केसेज हमने इसी तरह ठीक कराए, क्षमा याचना करा कि उनका डिप्रेशन ठीक हो गया, उनको अच्छी नींद आने लगी। तो बहुत ही सुंदर ये अनुभव सामने आया था, नजदीक का ही है, मुश्किल से 2 मास हुए होंगे, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ, प्यार भी था और क्षमा भी हो गई। तो जैसे संदीप कह रहे थे ना, दो पटरी, दोनों पटरी पर जब गाड़ी आई तो मिलन हो गया और बहुत अच्छा हो गया। ऐसे ही कई अनुभव हैं, हम सुनाते रहेंगे।
मतलब हमारे संकल्प जो है इतना प्रभावित होता है कि एक जगह एक माँ ने संकल्प किया और उस संकल्प का प्रभाव उस बेटा तक पहुंचा और उस बेटा का संकल्प माँ तक पहुंचा।
मेरे को भी एक अनुभव याद आ रहा है, बॉम्बे में एक फैमिली थी, अभी भी है, माता पिता, 2 बहनें और भाई भाभी ज्वाइंट रहते थे सभी। अभी कुछ बातों में आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया, बहुत प्यार था लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ इधर उधर के लोग कान भर देते हैं, तो उनके बीच में अभी झगड़ा होने लगा और झगड़ा इतने हद तक बढ़ गया कि घर में दीवार बना ली।
अच्छा।
फिर उनको भी ये क्षमा का मालूम पड़ा, फॉरगिव का पता चला और उन्होंने विधिवत इस काम को दोनों ने किया, भाई भाभी भी आए थे, दोनों बहनें भी आई थी।
अच्छा।
और जिनकी वजह से जो झगड़ा था वो उनको अपना रियलाइज होने लगा कि छोटी छोटी सी बातों के कारण हमने अपने इतने सुंदर सुखी संसार में दीवार खींच दी बीच में, तुम इधर रहो हम इधर रहेंगे,
एक दूसरे को देखना ही नहीं।
तो इन्होंने जाते ही दोनों ने एक दूसरे को क्षमा करना शुरू करा, ठीक है तुमने जो भी कुछ किया हम तुम्हें माफ करते, तुम हमारे अपने हो, हमारे ही रहोगे, चाहे कितनी भी हम दीवार खींच रहे, लोग तो हमें भाई बहन के नाम से ही जानेंगे, एक रिश्ते नाते के रूप से ही जानेंगे। उधर से उन्होंने भी ये काम करना शुरू कर दिया, बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव है। अब उन्होंने क्या किया, जो मैंने दुआओं की बात बताई थी कि हम दुआएं दे, एक नेगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए हम दुआएं दे, तो उन्होंने क्या किया, सिस्टर ने क्या काम किया उसकी, एक पेपर पर बहुत सुंदर सा उस पर पेंटिंग बना करके कुछ दुआएं लिखी।
अच्छा।
भाई तुम्हारा जीवन ऐसा हो, भाई तुम्हारा जीवन ये हो, तुम्हें ये प्राप्त हो, तुम्हें लाभ मिले, सुख मिले, दीर्घायु हो, ऐसे करके एक छोटी सी पेपर पे उसने पेंटिंग करके वो लिख करके दीवार के उस तरफ फेंक देती थी
जी।
अर्ली मॉर्निंग वो उसको उठाता था और पढ़ता था। तो क्या हुआ, 3 दिन तक कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। 4th दिन भाई ने क्या करा, भाई ने भी लिख करके उसकी तरफ फेंक दिया और ये सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा। अब दोनों के बीच में इतनी स्वीटनेस आ गई थी, बात अभी भी नहीं कर रहे थे लेकिन स्वीटनेस आ गई थी, और इस स्वीटनेस ने क्या किया, जो घर में दीवार बनी थी वो दोनों ने मिलकर तोड़ दी। फिर से दोनों एक हो गए, एक किचन में खाना बनने लगा, एक साथ बैठ के खाने लगे, विचार विमर्श होने लगा। तो देखिए ये बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है
जी।
और दुआएं क्या करती हैं, देखो मान लीजिए मेरे मन में आपके प्रति अशुभ भाव है क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं आपको खराब रूप में देख लिया
जी।
वो चीज मैं देख लिया जो मैं देखना नहीं चाहती थी, आपने कुछ ऐसे काम मेरे लिए कर दिए जो मेरे मन के अनुकूल नहीं थे, तो मेरे मन में अशुभ भाव पैदा
हुआ, मन में बैठ गया।
भाव पहले बदला, भावना पहले बदली, और जब अशुभ भाव पैदा हुआ तो जब मैं शब्दों में उस अशुभ भाव को लेकर आई तो वो बद्दुआ बन गए। इसी तरह से मान लीजिए किसी ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, मेरे हित में किया, मुझे मौका अवसर दिया, तो क्या हुआ उसके प्रति मेरे मन में भाव पैदा हुआ जिसका नाम हुआ शुभ भाव, और उस शुभ भाव को जब मैं अपने मुख से उच्चारित करती हूँ तो वो दुआओं का रूप ले लेता है। यही है, भाव जब हमारे मुख से निकलते हैं तो वो कभी बद्दुआ बन जाते हैं और कभी दुआ बन जाते हैं। अब ये काम कैसे करता है, मान लीजिए आपके मन में मेरे प्रति अशुभ भाव है और आप मेरा अशुभ अशुभ देखना चाहते हो, तो मुझे शब्द भी वही बोल रहे हो
जी।
अब इधर से अशुभ भाव का धुआं एक गुणा रूप में मेरी तरफ आ रहा है और मैंने बड़ा दिल करके समझदारी से बुद्धिमता से क्या किया, आपको इमीडिएटली 10 दुआओं का दान इधर से भेजा। अब इधर से एक गुणा बद्दुआ आ रही है, इधर से 10 गुणा सुंदर दुआओं का एक पॉजिटिव एनर्जी
फोर्स
इधर से जा रहा है। किसका भारी होगा प्रभाव, किसका होगा, एक गुणा या 10 गुणा, किसका भारी होगा, 10 गुणा का। तो अब हम कलयुग के अंत में नेगेटिव एनर्जी के बीच में हैं। मान लीजिए कोई मेरे लिए बार 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 अशुभ सोच रहा है तो कहीं ना कहीं मैं उसकी चपेट में आ सकती हूँ। उसकी चपेट से बचने के लिए सारे विश्व की आत्माओं के लिए मैं दिल से शुभ भावनाओं का दान दूं, दिल से सभी को दुआएं दूं, तो पता लगेगा कि पूरा विश्व ही मेरे फेवर में है, क्योंकि मैं उन्हें कुछ दे रही हूँ जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ। और खास आज मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जिनसे आपकी नहीं बनती है, जो आपसे नाराज रहते हैं, जिन्हें आप जानते हो, आज से एक एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिए, दिल से क्षमा कर दीजिए और उन्हें अपनी सुंदर ब्लेसिंग दीजिए।
बस आवश्यकता इसी चीज की है कि हमारी ओर से निरंतर दुआओं का फोर्स उनकी ओर जाता रहे
जी।
ये बद्दुआएं तो धुआं देती हैं।
हाँ हाँ हाँ।
जब हम किसी को बद्दुआएं देते हैं ना, बहुत लोग देते हैं
जी।
बुरे बुरे वचन बोलते हैं तो मुख से भी जैसे धुआं निकलता है, लोगों का दम घुटने लगता है उनकी बात सुन के। तो हम ध्यान इतना रखेंगे कि हम ये बद्दुआओं की धुएं से अपने को धूमिल ना होने दें
जी।
नहीं तो धुआं हम पे भी आता है और हमारी भी दुआएं कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। हम दुआओं का फोर्स चालू रखें और मैं सभी को, जैसे गीता बहन ने कहा, मैं सभी को ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक काम देना चाहता हूं। हमें सुनने वाले जो भी करोड़ों हमारे भाई बहने हैं, अपने अपने घरों में सुख शांति लाने के लिए, प्रेम का माहौल पैदा करने के लिए, जिसको भी आप अपना शत्रु समझते हो, जिसने भी आपका अपकार किया हो, आपका बुरा किया हो, आपको धोखा दिया, आपको सताया हो, आपका धन
आपको सदैव उसकी याद बनी हुई
बनी रहती है ना, और वो मन पे छाया रहता, आपका धन ले लिया उसने, धोखा दे दिया, तो एक 21 दिन के लिए रोज सवेरे 5 मिनट, 2 मिनट तो उसे अच्छे वाइब्रेशंस देंगे। जो राजयोग करते हैं वो इसकी विधि को अच्छी तरह जानते हैं, जो नहीं करते हैं वो सीख लेंगे। हम 2-3 मिनट उसको अच्छे वाइब्रेशंस देंगे योग के और एक फीलिंग देंगे, ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये भी भगवान का बच्चा है, ये भी कभी देवता था, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत धनवान हो, तुम बहुत सुखी हो। और फिर ये दुआएं हो गई ना हमारी उसको, फिर अगर क्षमा याचना करनी है क्षमा याचना करें, क्षमादान देना है क्षमादान दें। ये 5 मिनट का रोज का एक्सपेरिमेंट 21 दिन करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि संबंधों में मधुरस घुल जाएगा, जहां कड़वाहट है, जहां शत्रुता है, वहां मित्रवत हो जाएंगे, और इसे बहुत अच्छा होगा। 21 दिन की बात है, केवल 5 मिनट रोज, और मुझे पूर्ण विश्वास है सभी इसको करेंगे और जीवन की धारा बदल जाएगी, संबंधों का सुख मिलने लगेगा, और जो जो भी निगेटिविटी संसार में फैल रही है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि इससे हमें नुकसान नहीं होता, निगेटिविटी संसार में फैलती है, प्रकृति में जाती है, तो एक विशाल नुकसान होता रहता है इन चीजों से, जिसका मन उसको पता नहीं चलता है, उस नुकसान से हम सभी बच जाएंगे और इस संसार का जो ये वातावरण है ये पॉजिटिव एनर्जी से भरने लगेगा
जी। संदीप भाई, आप थोड़ा सा इसमें और बताइए कि कैसे हम दूसरों को जो दुआ देते हैं, और कभी कभी हम देखते हैं कि सामने वाले की जो बद्दुआ है
जी,
वो उससे हमारा प्रभावित ना हो जाए,
इसके लिए तो पहले ये समझना पड़ेगा कि अपने अंदर जितने सकारात्मक भावना होगी, जितने अच्छे भाव होंगे, उससे हम जितना भरते रहेंगे तो हमारा ज्यादा जोर से ज्यादा दिन तक चलता रहेगा। अगर हमारे अंदर उसके प्रति एक भी निगेटिव भावना आती है तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं। इस विधि को भी अगर समझते हैं तो हम अपनी तरफ से वो निगेटिव भावना से प्रभावित नहीं होंगे, सदा उसके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन करते रहेंगे। अगर ये पक्का हो जाए कि उसके द्वारा, क्योंकि क्षमा अगर नहीं करते हैं तो हम अपने आप को भी सजा दे रहे हैं, उसको तो दे ही रहे, अपने आप को भी दे रहे, और इस सजा से मुक्ति के लिए अपने पास ही उपाय है, अच्छे वाइब्रेशन देते रहे। जितने अच्छे वाइब्रेशन देते रहेंगे अपना भी ठीक होगा, उसका भी ठीक होता जाएगा।
मुझे थोड़ा सा बीच में और विचार आ रहा था कि मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे मान लो मेरे से किसी ने गलत व्यवहार किया
जी,
अब उसको मैं अपने भावावेश में आकर के या मेरे पहुंच के कारण या सामने वाले को सजा दिलाने के नाम से किसी न किसी कारण से उसको केस करके मान लो मैंने उसको कैदी के रूप में जेल में भेज दिया है
जी, जी,
अब उस समय तो मुझे इतना पता भी नहीं था कि उसको मुझे क्षमा भी कर देना चाहिए, तो क्या ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी के साथ हमारी इतनी जो भावना खराब थी और वो आज जेल में है, वो पड़े हुए हैं, उनको भी हम अपने वाइब्रेशन पहुंचा सकते हैं, उनसे भी माफी मांग
बिल्कुल
सकते हैं।
बिल्कुल माफ सकते, बिल्कुल माफ कर सकते हैं। जैसे भाई साहब ने बताया कि 5 मिनट सुबह, इसमें हम क्या कर सकते, एक और काम कर ले होलसेल में
जी,
होलसेल में समाधान के वाइब्रेशन सारे संसार में फैला। हाँ, तो जो जानते हैं उनके लिए तो करते ही है, जिनके गलती से हमको पता नहीं है, इनके प्यारे इनके लिए भी हमारे से कुछ गलती होगी, तो होलसेल में कि भाई हम अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, हम जाने अनजाने में हमारे द्वारा और किसी से भी होती है, तो होलसेल में सबके लिए क्षमा भी भेजे और अपने लिए किसी से गलती से अगर कोई गलती हमारे हमसे हुई है उसके लिए क्षमा भी ले।
बहुत प्रैक्टिकल, किसी के साथ हमारा हुआ रहता है वो कांटा की तरह चुभता रहता है
जी,
कि भले वो कहीं सजा काट रहा हो तो भी अरे हाँ मेरे साथ इसने बहुत गलत किया था, इसको अच्छा हुआ जेल में सड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए भी हम पर्सनली रूप में भी उसको क्षमा दान दे संकल्प के।
बिल्कुल, इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत बार ऐसी बातें होती है कि कोई जो दुख है वो निकलना मुश्किल हो जाता है, वरना हम विधि तो अपनाना, विधि तो पता है इस प्रकार से करना है, लेकिन विधि तक पहुंच ही नहीं पाते
जी, जी।
क्योंकि उसको जैसे वो व्यक्ति आता है या उसके बारे में सोचते हैं या उसका नाम भी आता है, भले उसका नाम दूसरे का नाम है, मतलब दूसरा कोई भी उस नाम से आता है हमारे सामने, तो भी नफरत हो जाएगी, वही सामने आ जाएगा, वही नफरत हो जाएगी। तो इसमें साइकोलॉजी में क्या करते हैं कि उसके बारे में, मतलब जो आपके साथ उसने किया वो सब पेपर पर लिखने के लिए बोलते हैं।
अच्छा,
लिखने से क्या होता है, लिखना ये भूलने का बहुत सहज कारण, जब भी हम लिखते हैं तो भूलने के लिए, क्योंकि देखो जब से मोबाइल आया है सारे नंबर तो मोबाइल में, हम याद नहीं
रखते क्या लिखे
उसने, जो जो हमारे साथ किया
जी,
जैसे जैसे हुआ, जैसे देखिए अभी हमारी शूटिंग चल रही है या हम कुछ कर रहे हैं, एक जीवन में शूटिंग होती है उसमें कुछ मक्खी आएगा तो मक्खी तो हम नहीं चाहते, हाँ। तो हम रीटेक करते हैं।
अच्छा,
रीटेक करते माना वो जो हुआ है उसको कट कर देते
जी।
उससे क्या होता है, वो कट करने के कारण फिर से जीवन शुरू हो जाता है
जी,
यात्रा
जी।
आगे बढ़ जाती है। तो ये लिख रहे हैं माना क्या कर रहे हैं, रीटेक कर रहे हैं, वो फिर से याद हो जाता है, शूटिंग चालू होती जाएगी। वो जितना उस समय लिखते समय ये भी होता है कि उसने इतना दुख हो दिया होता है, रोना भी आता है।
कुछ चीजें लिखते हैं याद रखने के लिए
जी,
लेकिन आप बता रहे हैं लिखना है भूलने के लिए
जी। नहीं, जो चीजें बार बार रिवाइज करते हैं वही याद रहती है
जी,
लेकिन जो एक बार लिख दिया,
एक्चुअली
बहुत अगर आप साइकोलॉजिकल हिसाब से सोचते हैं, आप इस पर सोच भी सकते हैं कि हम लिखते क्यों है। अभी देखिए मोबाइल नंबर लिखे हुए याद तो नहीं रखते ना, लिखे है ना
जी जी,
तो लिख देते भूलने के लिए लिखते
जी जी।
तो अगर उसने जो जो हमारे साथ किया वो हम लिखते हैं, माना उस सिचुएशन को, वो परिस्थिति को जीते हैं
जी,
और जीवन को परिवर्तन करने के, जीना कंप्लीट हो गया ना, अब जी लिया, अब भोजन कर लिया, उपवास करेंगे, तो वो कंप्लीट हो गया, तो भूलना सहज हो जाता है
जी,
जब लिखते हैं। लिखने के बाद उसके प्रति पूरा मन जो भारी था वो हल्का हो गया, पूरा लिख दिया, पूरा खाली हो गया, अब समाधान संभव हो सकता
जी जी जी,
अन्यथा नहीं। जब हम उसके बारे में सब लिखते हैं, और जब लिखते हैं उस समय रोना भी आ सकता है।
अच्छा।
जितना दिल से रोएंगे उतना ज्यादा हल्का होंगे,
ओ।
रोने से मन हल्का होता, और उसके बारे में नफरत भी वो रोने के साथ गल जाती, निकल जाती, जितनी निकल जाएगी तब जाके हम उसके प्रति अच्छे भाव, अच्छे संकल्प, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प, या कहो जैसे दीदा दीदी ये अच्छे दुआ दे सकते, तब तक नहीं होगा। तो ये साइकोलॉजिकल विधि में ये आता है कि आप लिखो
जी,
लिखने से वो एडिट हो जाएगा
जी, जी,
मन हल्का हो जाएगा,
अंदर से निकल जाएगा,
अंदर से निकल जाएगा
जी, 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 जी।
इसमें इतना भी मैं कह सकती हूँ कि जब तक आप ये प्रयोग कर रहे हैं, जैसे भाई जी ने 21 डेज दिया है
जी,
तो इसमें एक दृढ़ संकल्प के साथ हम एक उपवास भी कर ले, कि जिस आत्मा से मेरी नाराजगी है और जिसे मैं क्षमा दान दे रही हूँ या जिससे मैं क्षमा मांग रही हूँ, उसका चेहरा जब भी मेरे सामने आएगा, जब भी उसकी कोई भी बात याद आएगी, तब तब मैं केवल उससे शुभ भावना ही दूंगी, दुआएं ही दूंगी, उसके लिए कुछ भी अशुभ भाव अपने मन में पैदा नहीं करूंगी। और इसके लिए हम विशेष एक बात का ध्यान रखेंगे कि यदि मैंने यहाँ उसके लिए अशुभ भाव पैदा कर लिया तो वो 100% मेरे लिए अशुभ करने वाला है।
जी जी जी,
वो मुझे अशुभ ही देने वाला है। तो अपने अपने शुभ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी बेनिफिट के लिए मुझे यहाँ केवल उसके लिए शुभ 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 सोचते जाना है। चलो माफ कर भी दिया, लेकिन माफ करने के बाद क्या करते हैं, देखो बहन जी आपके कहने से मैंने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन पता है उसने मेरे साथ ये किया, तो जितनी बार मैं उसकी बातों को याद कर रही हूँ माना उसे बढ़ावा दे रही हूँ।
जी, जी जी,
मुझे उस चीज को भूलना है, माफ कर दिया माना भूल जाओ, अब मुझे एक अच्छा एटीट्यूड अपनाना है, दुआएं तो दुआएं, भले वो मेरे सामने आके भी मुझे बददुआ दे रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती वाला काम होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा मेरे लिए कि मैं जिसे माफ कर रही हूँ, जिसे सुबह शाम दुआ दे रही हूँ, हो सकता है कि उसका मन इतना कठोर हो या उस पर संस्कार इतने भारी हो कि वो मेरे सामने आके लड़ाई झगड़ा करने लगे और उल्टा उल्टा बोलने लगे, बददुआएं देने,
तो भी मुझे नहीं,
भी मुझे कंट्रोल में रहना है।
बहुत गहरी बात भाई जी समझ में आ रही कि अगर हम हमारा संकल्प निगेटिव है तो सामने वाले को निगेटिव चलाने के निमित्त भी हम है।
कई बार लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि सबको माफ कर दिया पर एक को बिल्कुल नहीं करेंगे। तो गीता बहन ने फॉरगिवनेस की क्लास कराई थी
जी।
तो बहुत अच्छा हुआ, तो एक व्यक्ति बुजुर्ग सा आया हमारे पास, हम दो तीन थे, कहा भाई बहुत सुंदर क्लास हुई, मैंने तो सबको माफ कर दिया है लेकिन मेरा लड़का उसे माफ कभी नहीं करूंगा।
अच्छा,
मैंने कहा क्या हुआ? कहा मैंने उसको इंजीनियरिंग कराया, सारा पैसा खर्च करके अमेरिका भेजा, वहां उसने शादी कर ली और अब मेरे से बात नहीं करता, फोन नहीं उठाता, फोन काट देता है, तो मैं उससे इतना नाराज हूँ, उसे कभी माफ नहीं
करूंगा लेकिन उसको नहीं,
खुद के बेटे को नहीं।
तो हमने उससे और अच्छी बात की, मैंने कहा दुखी तो आप भी है ना, प्यार तो आपका बहुत है ना, और चाहते तो आप भी है ना कि वो आपसे बात करे, बस यही तो रोना है। तो मैंने कहा अच्छा बस इतना मेरी ओर से मान लो कि उसे भी क्षमा कर दो, आपका ही है ना
जी।
और बस उसने फिर एक मिनट जस्ट मगन हुआ वो और कहा अच्छा चलो, उसको भी क्षमा किया। और रात को ये चर्चा हो रही थी, सवेरे उसका फोन आया, फोन उठाया इसने और जब सुना पापा, इसके नैन भर आए
जी
और कहा उसने क्षमा मांगी, मेरी बहुत बड़ी गलती, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, आपने हमारे लिए क्या क्या किया और हमने आपको सचमुच,
जबकि उसको पता ही नहीं है कि मेरे पिताजी मेरे लिए क्या,
ये इस तरह काम करता है।
इसमें जैसे बात चल रही थी कि हम अगर अच्छे संकल्प देते हैं तो उनके संकल्पों में भी हम परिवर्तन ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। अगर अपने तरफ से नेगेटिव संकल्प देते हैं तो उसके अंदर नेगेटिव संकल्प आएगा, हमारे अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन जाते उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन जाते। इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक एग्जाम्पल प्रैक्टिकली संसार का भी है। जैसे देखे हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एडिट कर सकते हैं, इसके लिए टीम व्यूअर करके एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिसका मतलब जिसको भी अपने कंप्यूटर से उसके कंप्यूटर में, वो हजारों किलोमीटर दूर है लेकिन एडिट होते रहता है। जैसे देखो हम टिकट निकालते क्या करते, उसके कंप्यूटर में एडिट कर रहे, अपना नाम डाल रहे, जो सब ये ऑनलाइन जब करते तो अपने कंप्यूटर से उसके कंप्यूटर में एडिट कर रहे हैं। लेकिन ये कब हो सकता है, जब फेथ हो
जी, जी,
प्यार हो, बिना प्यार के नहीं हो सकता, वो पासवर्ड क्यों देगा, वो एक्सेस क्यों करने देगा। लेकिन जब दुआएं अच्छे वाइब्रेशन हम क्रिएट करते हैं तो उसके मन में हमें एडिट करने का चांस मिलता है, तब हम एडिट करते तो हमारे अच्छे संकल्प उसके पास जाते, वो हमारे फ्रीक्वेंसी से मैच होता, अच्छे वाइब्रेशन मिलते, फिर परिवर्तन होता।
हमें समझ में आया कि सचमुच अपने जीवन में दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसे हम अपना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि चाहे कोई कैसा भी हमारे साथ व्यवहार किया हुआ हो, कुछ गलती की हुई हो, चाहे अपने सगे रिश्ते हो, ब्लड रिलेशन में हो, तो भी हम उनके साथ वैसा ही भावना रखें, शुभ भावना रखें, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसके अंदर परिवर्तन आएगा। जैसे भाई साहब ने उदाहरण बताया कि बेटा को माफ किया और बेटा का दूसरे दिन फोन आ गया, कितनी सुंदर बात। तो इस तरह से हमें आशा है हमारे दर्शकों को बहुत प्रिय लगेगा ये चीजें, आप तीनों समय निकाल करके आए, सुंदर विचार रखे, उसके लिए पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, आज हमने ये सत्य ज्ञान जाना कि हमारा जो सकारात्मक संकल्प का प्रभाव है वो दूसरों तक पहुंचता है। क्यों ना आज से संकल्प कर ले, किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया हो, चाहे वो अपने हो, खून का रिश्ता हो, आज तक हमारे मन में उसके प्रति बहुत गलत गलत भावनाएं, गलत विचार चलते रहे हो, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने भी जाना, आप सबने भी देखा कि कैसे दूर बैठे व्यक्ति भी हमारे श्रेष्ठ भावना से, हमारे श्रेष्ठ संकल्प से, हमारे एक संकल्प कि उसको मैं माफ कर रहा हूं, इसका प्रभाव पड़ता है। इससे परिवार में खुशहाली आती है, जीवन का आनंद कई गुना बढ़ जाता है और ये सफर सुहाना हो जाता है। इन्हीं सुंदर बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलेंगे। नमस्कार।